ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 जुलाई 2024 के लिए है। विषय सत्य स्वर्णपथ योहन्ना। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उत्तरदायी अध्ययन योहन्ना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखला, अपना पाठ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर में तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वचा और चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। भजन संहिता। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। दानियल। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनज़र ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तुनाहे और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका सपना बताएं। सो वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चरण जीव रहे, अपने दासों को सपना बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत सपने को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषी और तांत्री और कसदी से ऐसी बात पूछी हो। सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाएं। और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए तो वो महाराज को सपने का फल बता देगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सामुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बिंदुओं में से एक मुझे मिला है जो राजा को सपने का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बिलतिशर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो सपना मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भवि बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रगट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनज़र राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। दानियल, अब मैं नबूकदनज़र स्वर्ग के राजा को सिराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पितिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। भजन संहिता। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यूहन्ना। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। यूहन्ना। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास रखे वो अंधकार में ना रहे। करंथियों। और हम जो उसके सहकर्मी जैसे हैं ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के नियन अपने सब गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े दायरों से, क्लेशों से, दृढ़ता से, संकटों से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धामरकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हैं। यूहन्ना। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सत्य अमर मन की बुद्धि है। सत्य वो प्रकाश है जो त्रुटि को दूर करता है। सत्य को समझने से पहले सच्चाई की आध्यात्मिक समझ हासिल कर लेनी चाहिए। इस भावना को केवल इसलिए आत्मसात किया जाता है क्योंकि हम ईमानदार, निस्वार्थ, प्यार और नम्र हैं। ईमानदार और अच्छे दिल की मिट्टी में बीज बोना चाहिए। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक के छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भावतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। क्रिश्चियन साइंस तेजी से सच को विजय दिखाती है। भौतिक ज्ञान के सभी प्रमाण और भौतिक ज्ञान से प्राप्त सभी ज्ञान विज्ञान को सभी चीजों के अमर सत्य तक पहुंचाना है। सबसे अच्छा उपदेश जो सत्य का उपदेश है वो पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश द्वारा प्रचालित और प्रदर्शित किया जाने वाला सत्य है। ये जानकर और ये भी जानकर कि एक स्नेह हम में सर्वोच्च होगा और हमारे जीवन में अग्रणी होगा, यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से निर्माण नहीं कर सकते। सत्य एक नया पुरानी बनाता है जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी कामुकता आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ है। हम पहले से भरे हुए बर्तन नहीं भर सकते, उन्हें पहले खाली किया जाना चाहिए। त्रुटि को अस्वीकार करें, फिर जब ईश्वर की हवाएं बहेंगी तो हम अपने तंतुओं को हमारे करीब नहीं लाएंगे। नश्वर मन से त्रुटि निकालने का तरीका प्रेम के बाढ़ ज्वार के माध्यम से सच्चाई में डालना है। मसीही पूर्णता किसी अन्य आधार पर नहीं जीती जाती। क्या तू खोज करके ईश्वर को ढूंढ सकता है? सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अन्य चेतना नहीं बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। अधिक जानने के लिए हमें जो पहले से जानते हैं उसे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्य को समझने पर प्रदर्शित किया जा सकता है और उस अच्छे को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक ये प्रदर्शित ना हो जाए। यदि हम थोड़े में विश्वासयोग्य रहें तो हम बहुतों के अधिकारी बनाए जाएंगे, परंतु एक अपरायुक्त प्रतिभा नष्ट हो जाती है जब बीमार या पापी व्यक्ति ये महसूस करने के लिए जागते हैं कि उनके पास जो नहीं है उसकी आवश्यकता है, तो वो दिव्य विज्ञान के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं जो उन्हें भावतिक इंद्रियों से दूर करके आत्मा की ओर आकर्षित करता है, शरीर से विचारों को हटा देता है तथा नश्वर मन को भी रोग या पाप से बेहतर किसी चीज के चिंतन की ओर ऊपर उठाता है। ईश्वर और सच्चा विचार जीवन और प्रेम की सच्ची समझ देता है, जीत की खबर को लूटता है, सभी पापों और भ्रम को दूर करता है कि अन्य मन है और मृत्यु डर को नष्ट कर देता है। इससे पहले कि मानव विज्ञान चीजों की झूठी भावना में अपनी गहराई तक डूबा हो, भौतिक उत्पत्ति में विश्वास करते हैं जो एक मन और अस्तित्व के सच्चे स्रोत को छोड़ देते हैं। ये संभव है कि सत्य से छापे ध्वनि के रूप में अलग थीं और वो ध्वनि के रूप में आदम नबियों के लिए आई थी। यदि सुनने के माध्यम पूर्ण आध्यात्मिक है तो ये सामान्य और अविनाशी है। दिव्य विज्ञान बाइबल से अपनी मंजूरी प्राप्त करता है और बीमारी और पाप को ठीक करने में सत्य के पवित्र प्रभाव के माध्यम से विज्ञान की दिव्य उत्पत्ति का प्रदर्शन किया जाता है। सत्य की ये उपचार शक्ति उस अववादी के लिए पूर्व काल में रही होगी जिसमें यीशु रहते थे। ये उतना ही प्राचीन है जितना के प्राचीन दिन थे। ये सभी जीवन के माध्यम से रहता है और पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है, त्रुटि सत्य के विपरीत कुछ हो सकता है। बुराई शून्य का प्रतिकार है। सबसे बड़ी गलती सर्वोच्च अधिकार के विपरीत है। विज्ञान से परिणत विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कायरिता है। दिव्य विज्ञान जोर देकर कहता है के समय ये सब साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं और सत्य भी अभी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है। एक बार में नश्वरत की त्रुटि को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामंजस्यपूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाइयों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। सत्य, जीवन और प्रेम ही मनुष्य पर एकमात्र वेद और शाश्वत मांग है, और वो आध्यात्मिक कानून निर्माता है जो ईश्वरीय विधियों के माध्यम से आज्ञाकारिता को लागू करते हैं। सत्य हर प्रकार की त्रुटि के लिए ईश्वर का उपाय है और सत्य केवल असत्य को नष्ट कर देता है। इसलिए तथ्य यह है कि आज कल की तरह मसीह बुराइयों को दूर करता है और बीमारों को ठीक करता है। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। हम वैज्ञानिक हैं केवल तभी जब उस पर अपनी निर्भरता छोड़ देते हैं जो असत्य है और सत्य को समझ लेते हैं। हम तब तक वैज्ञानिक नहीं हैं जब तक हम सब कुछ मसीह पर छोड़ नहीं देते। मानवीय विचार आध्यात्मिक नहीं है, वो कान की सुनवाई से, सिद्धांत की बजाय भावतिकता से और अमर की बजाय नश्वर से आते हैं। आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है, आत्मा ईश्वर है। हम ईश्वराय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। शाश्वत सत्य ब्रह्मांड को बदल रहा है। जैसे जैसे नश्वर अपने मानसिक कपड़े उतारते हैं, विचार अभिव्यक्ति में फैलता है। उजाला हो, सत्य और प्रेम की स्तुत मांग है। राजकथा कुक्रम में और कला को क्षेत्रों के संगीत में बदलना है। अब मैं बेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।